आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हाल ही में एक नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे ग्रुप 8 के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कहीं पर रिसर्च का स्तर गिरता जा रहा है। साथ में ये भी है कि भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खास तौर पे शोध के क्षेत्र में। इस विषय के बारे में और जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है अपने खास मेहमान सीधे कैनबरा से उस्मान चौहान को, जो नीति विशेषज्ञ हैं और इस पे काफी शोध पत्र लिख चुके हैं, काफी रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इनके प्रकाशित हुए हैं। उस्मान, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित जी।
उस्मान, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि रिसर्च या शोध की जरूरत क्यों पड़ती है?
जी बिल्कुल, पहले तो आप देखें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तीन किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट से। पहले तो आते हैं बेसिकली रूडिमेंट्री बेसिक स्किल्स के लिए कि वो फिर उनको जो है PR वगैरह मिल जाएंगी और कुछ ज्यादा उनकी अपग्रेड नहीं होती। जो दूसरा लेवल होता है उसमें फिर वो एक जेन्युइन अपग्रेड के लिए आते हैं मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, और जो हाईएस्ट लेवल होता है उस पे रिसर्च तहकीक शोध होता है। और इसमें जो है उनका मकसद ये होता है कि वो बाउंड्री जो है इल्म की वो बढ़ाएं, तो यानी कि जहाँ रिसर्च तहकीक नहीं की गई उसको एक्सपेंड करें। तो ये एक महदूद लिमिटेड एरिया होता है और इसमें पहली बात तो है कि फंडिंग और कंपटीशन बहुत होती है, दूसरी बात है कि इसमें स्ट्रेस भी बहुत होता है, और तीसरा है कि इसमें आपको ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती रिसर्च में, तो आपका सेल्फ इनिशिएटेड प्रोग्राम होता है। और अक्सर जो लोग होते हैं वो बड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट से हों चाहे यहाँ से हों, उनके लिए वो जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट होता है रिसर्च का उनको बड़ा मुश्किल लगता है।
जी, जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था जो यहाँ PhD करने आए हैं, भारत में PhD कर रहे थे, छोड़ दिया उसे और यहाँ आ गए कि बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, तो बोला 3 साल जो दिमाग का दही हुआ है, जो बिल्कुल बम्बैया भाषा होती है, तो बोला मुझे 3 साल का और आराम चाहिए रिसर्च के बाद। तो इतना ग्रोलिंग होता है यहाँ पर।
बेशक यहाँ पे आपको जो है, आपने अगर डेटा पढ़ी है तो आपको इस बात से हैरत भी होगी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होता है वो रिसर्च PhD लेवल पे शदीद होता है। यहाँ तो छोड़ें UK के नंबर ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पर वो बताते हैं कि 50% जो लोग मुंसलिक हैं हायर रिसर्च से उनके दिमाग किसी तौर से ख़राब हैं, वो किसी नफसियाती साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में हैं। तो कोई माहौल भी ख़राब है, सेल्फ इनिशिएटेड वर्क भी इतना स्ट्रेसफुल है, पर कोई बड़ा गहरा मसला है जिसका अभी तक कोई हल नहीं पाया गया, और लिहाजा लोग जो हैं उनके बहुत पेचीदा मसले हैं हायर रिसर्च में।
जी उस्मान, आपको फिर से उस रिपोर्ट की तरफ ले जाता हूं जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे यूनिवर्सिटीज, यहां 30 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो टॉप करती हैं वो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की जो काउंसिल है वो कहती है कि किसी प्रकार से यहां पर जो स्तर है वो गिरता जा रहा है रिसर्च का, कि हो सकता है सरकार जो है उतना पैसा नहीं लगा रही है। आप इसे सही मानेंगे?
जी, इनकी बात दुरुस्त है, और इसका एक बुनियादी मसला ये है कि रिसर्च जो है उसकी आपको जो है रिटर्न्स, उसके फ़ायदे आपको एकदम नहीं मिलते, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं जब आप रिसर्च फंडिंग करते हैं। और चूंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका और कनाडा UK की तरह अब प्रॉफिट बेस्ड मुनाफे की तरफ जा रही हैं, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ डालती हैं जहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वो डिपार्टमेंट्स आपके आमतौर पर होते हैं मेडिसिन, बिजनेस और इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि बाहर से जो है चाइना इंडिया वगैरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं खास तौर पे इन फैकल्टीज़ में, तो वो जो जितना भी उनका पैसा होता है वो इनमें लगा देते हैं। तो जो प्योर रिसर्च होती है खास तौर पे अनयूजुअल फील्ड्स में जहाँ पर असली ब्रेक थ्रूज हो सकती हैं, वहाँ पर पैसा कम लगाया जाता है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव अब बहुत डीपली इंट्रेंच्ड है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में।
जी चलिए बात करते हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या अपने सब कॉन्टिनेंट की, वहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त की रिसर्च में फंडिंग हो रही है कि वहाँ भी यही सिलसिला चाहिए?
जी, वहाँ पर ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉफिट मोटिव का इशू नहीं होता, वहाँ पर फंडिंग दी जाती है और अब आप देखते हैं वहाँ पे रुझान है टुवर्ड्स बेसिक रिसर्च। यहाँ पे जो है या तो बहुत ही एडवांस रिसर्च और लेबोरेटरीज पे काम होता है या फिर प्रॉफिट फंडेड वही फैकल्टीज को फंडिंग होती है, और हमारे यहाँ जो ट्रेंड आपको नज़र आता है वो है बेसिक रिसर्च की तरफ। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको एक बेस मिल जाती है रिसर्च की जिस पे आप बाद में डेवलपमेंट्स करेंगे, तो ये अभी एक सरमाया है जिसके आगे जाके ریٹرنز ملیں گے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ہیں لوگ بڑے تیز ہو چکے ہیں ان چیزوں میں, لائک پبلشنگ کی جو ریس ہوتی ہے, تو پبلش کرنے میں جو ہے اب آپ دیکھیں تو زیادہ جو گروتھ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے. میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ٹاپ ٹو یا ٹاپ تھری میں آتے ہیں ان ٹرمز آف انکریز ان نمبر آف ریسرچ پبلیکیشن, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک دھندا ہے, ایک گیم ہے, تو وہ پبلش کرتے جاتے ہیں بے تحاشا.
جی آپ نے بات کی ریسرچ پبلیکیشن کی, تو میں پڑھ رہا تھا کہ فزکس میں ایک پیپر جو ہے بھارت سے چھپا ہے جس میں 40 لوگوں نے اسے آتھر کیا. تو ایسا کہیں اور سنا ہے آپ نے؟ ایک بار اس سے پہلے آیا تھا 150 آتھر تھے, شاید وہ سارے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس پہ مل کے کام کیا تھا ریسرچ پہ. تو اس طریقے کا جو ٹرینڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند ہوگا ریسرچ کے لیے؟
جی فزکس کیمسٹری وغیرہ ان میں ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی کا مولیکیول استعمال کیا ہے تو آپ کو ان کا نام ضرور آتھرز میں لگانا پڑتا ہے. باقی فیلڈز میں یہ کم نظر آتا ہے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو کو آتھرشپ اور یہ جو میوچول گیمنگ ہوتی ہے, سب مل جل کے ایک پیپر لکھتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 150 لوگوں نے مل کے ایک ہی صفحہ لکھا ہو, لیکن یہ بیسکلی پبلشنگ میں کوئی اسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے, اس لیے جو بھی لوگوں کو مناسب لگے وہ اسی رستے پہ چل جاتے ہیں. اور اس لیے ریسرچ جو ہے اب وہ آرگنائزیشن اس میں نہیں نظر آتی.
جی چلتے چلتے عثمان نوبل کا سیزن چل رہا ہے, نوبل پرسکار بٹنے شروع ہو چکے ہیں, کافی لوگوں کو ملے ہیں لٹریچر کے لیے, ابھی آئیں گے ساتھ میں ہی فزکس کیمسٹری میں مل رہے ہیں. جہاں بات کریں آسٹریلیا سے اس سال پیچھے چھوٹتا نظر آ رہا ہے, اور ساتھ میں ہی بھارت یا انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ریسرچ کو اگر ہم ایڈوانس لیول پہ لے جائیں ترنت کولیبریشنز کے ذریعے آپسی ملکوں میں, پاکستان, بھارت, شری لنکا, نیپال وغیرہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, اور ایسی ریسرچ جس سے انڈسٹری ریلیٹڈ ریسرچ کہا جاتا ہے, تو اس سے ہمیں نوبل کی ریس میں موقع ملے گا بھاگ لینے کا.
جی بالکل, ہمیں ہمیشہ اس دوڑ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اصل میں اگر آپ نوبل کے ایشوز دیکھیں تو ایک تو سپلائی کا ایشو ہے, ڈیمانڈ کا. سپلائی یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ جو پاتھ کرتے ہیں وہ انکریمنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ذرا ریسرچ کرتے 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 بریک تھروز آتی ہیں. تو جو نوبل ہے وہ ریوارڈ کرتا ہے کسی خاص ان یوژول بہت لائف لانگ قسم کی اچیومنٹ کو, تو اس میں مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اپروچ ذرا اسٹیپ 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 کر کے ہوتی ہے. دوسری بات ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو یہ جو پرائزز ہوتے ہیں خاص طور پہ یہ نوبل پرائز آف اکنامکس, ان میں تھوڑی سیاست بھی ہوتی ہے, یعنی کہ جو بھی ناروے اور سویڈن کی جو گورنمنٹس ہیں, سینٹرل بینک ہے اور ان کی جو رائلٹی ہے اور ان کی سائنس کمیشن ہے, وہ بھی جو اپریشیٹ کرتے ہیں چیز اس کو وہ ڈیسائیڈ کر کے دیتے ہیں. تو اگر آپ نارویجنز اور سویڈش کو خوش کر دیں تو شاید آپ کو جلدی مل جائے.
عثمان ایس بی ایس اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد.
آپ کا بھی بہت شکریہ امیت جی.
آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ہندی, اپنے ریڈیو پر ہر شام سنیے ہمارا کاریکرم. آپ ہمارا کاریکرم ہماری ویب سائٹ پر اور ایس بی ایس ریڈیو موبائل ایپ دوارا سن سکتے ہیں. sbs.com.au/hindi پر جائیں.